आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर से जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। राज्य के 2,15,00,000 किसानों के लाभान्वित होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 95 नई परियोजनाओं को दी स्वीकृति। मेरठ कानपुर और मथुरा वृंदावन की विकास कार्य योजना की प्रगति की ली रिपोर्ट। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह के अनुष्ठान कल से कलश यात्रा के साथ होंगे शुरू। 25 नवंबर को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराने के साथ ही परिसर के साथ अन्य मंदिरों में भी फहराई जाएगी पताका। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने मतदाताओं से की SIR में भागीदारी की अपील। कहा, शुद्ध निर्वाचक नामावली से और मजबूत होगा लोकतंत्र। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोयंबटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। इससे प्रदेश के लगभग 2,15,00,000 किसानों समेत देशभर में 9 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्राकृतिक खेती के मामले में वैश्विक केंद्र बन गया है।
भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है। देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इससे देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों की ओर से सम्मान निधि के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इससे राज्य के कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश के कई जिलों में देखा गया। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि इस योजना ने देश के छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त किया है। लखनऊ में कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि किसान सम्मान निधि किसानों के खातों में बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुंच रही है।
बिना किसी भ्रष्टाचार के किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना हर किसानों के खाते में पहुंच जाती है। देश के किसान आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खुश हैं। यह किसान सम्मान निधि समृद्ध बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में, किसानों को खुशहाल करने में बहुत उपयोगी साबित होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 95 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। वहीं एक अन्य बैठक में मेरठ कानपुर और मथुरा वृंदावन के समग्र नगरीय विकास की कार्य योजना के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। पेश है एक रिपोर्ट।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने नहर व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 95 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को समयबद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 36,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित होगी, जिससे लगभग 9,00,000 किसान और ग्रामीण आबादी को लाभ मिलेगा। इसके अलावा श्री योगी ने मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन के समग्र नगरीय विकास की कार्ययोजना की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नगरों का विकास उनके स्थानीय पहचान, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का संतुलन बनाते हुए किया जाए। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आगरा में यूनिटी मार्च में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरदार पटेल की जीवन गाथा और योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये विशेष अभियान चला रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज बरेली में आयोजित एकता यात्रा में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरा कर रहे हैं।
सच्ची श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ पटेल जी के लिए है, जिनका एक परिकल्पना थी एक भारत और श्रेष्ठ भारत, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें जो सरदार जी ने की थी उस समय पे, वो उसकी जो उनकी सोच थी वो आज पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। हमारे छात्र छात्राएं भी हैं, उनको भी हम लोग प्रेरणा देते हैं कि ऐसे महापुरुषों के पदचिन्हों पर चल के इस देश की सेवा में अपना पूरा योगदान दें।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह के अनुष्ठान कल से कलश यात्रा के साथ शुरू हो जाएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार 23 से 25 नवंबर तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराने के साथ ही परिसर में बने 7 अन्य मंदिरों में भी पताका फहराई जाएगी। उन्होंने बताया कि 11 मीटर चौड़ी और 22 मीटर लंबे ध्वज को फहराने का सफल ट्रायल किया जा चुका है और कार्यक्रम की सभी तकनीकी तैयारियां पूरी हैं। श्री मिश्र ने कहा कि ध्वजारोहण के चलते 25 नवंबर को श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन नहीं मिल पाएंगे, हालांकि 26 नवंबर को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। ऐसे में दर्शन के समय को सामान्य दिनों से बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
हम ये जानते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती 26 तारीख को रहेगी, जैसा कि जनवरी में था जबकि प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। एकाएक भीड़ आएगी, लेकिन कोशिश यह की जा रही है कि उस दिन कम से कम 26 तारीख को 15-16 घंटे या उससे भी अधिक मंदिर खुला रहे, जिससे जो लोग भी बाहर से आएंगे उनको पूरी दर्शन हो सके।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR में सक्रिय भागीदारी करें। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित गणना प्रपत्र को मतदाता ध्यानपूर्वक भरकर BLO को वापस दें। जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित फॉर्म BLO को प्राप्त हो जाएंगे उनके नाम आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसका प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को होगा।
उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि हमारा घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का चरण शुरू हो चुका है। गन्ना फॉर्म मिलने पर उस पर अपना हस्ताक्षर करके BLO को वापस कर दें। यदि मतदाता घर पे नहीं है तो परिवार का कोई एक व्यस्त सदस्य सभी परिवार के सदस्यों के प्रगन्ना फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षर करके BLO को देने के साथ ही साथ एक थी अपने पास वो जरूर रखें। ऐसे मतदाता जिनका हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म हमें मिल जाएगा, उन सब का नाम हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी उसमें आ जाएगा।
पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोर्ड बंकर ने बस्ती में अमृत भारत योजना के तहत सौंदर्यीकरण और निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग, सिग्नल, विद्युत व वाणिज्य विभाग के अधिकारियों से विस्तृत फीडबैक लिया। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल से गोवा के पणजी में शुरू हो रहा है। इस वर्ष का फिल्म महोत्सव अपनी पारंपरिक प्रतिष्ठा को आगे ले जाते हुए कई विशिष्ट आयोजनों का साक्षी बनेगा। एक रिपोर्ट।
देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला गोवा अब 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पणजी शहर के कोने कोने में इस महोत्सव का उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। कल से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण के मंच से पर्दा उठ जाएगा और फिर उत्कृष्ट फिल्मों का अद्वितीय सिनेमाई समारोह शुरू होगा। भारत ने इस वर्ष अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और व्यापक बनाते हुए कई देशों को विशेष सम्मान दिया है। इस संस्करण में जापान फोकस देश, स्पेन भागीदार राष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट देश के रूप में शामिल हो रहे हैं। आदर्श के साथ मैं निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी गोवा।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर से जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। राज्य के 2,15,00,000 किसानों के लाभान्वित होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 95 नई परियोजनाओं को दी स्वीकृति। मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन की विकास कार्य योजना की प्रगति की ली रिपोर्ट। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह के अनुष्ठान कल से कलश यात्रा के साथ होंगे शुरू। 25 नवंबर को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराने के साथ ही परिसर के सात अन्य मंदिरों में भी फहराई जाएगी पताका। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिवा ने मतदाताओं से की SIR में भागीदारी की अपील, कहा शुद्ध निर्वाचक नामावली से और मजबूत होगा लोकतंत्र। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।